अस्सलाम वालेकुम। नावल है दियारे दिल, एपिसोड नंबर 11। वो जानती थी वली कितना भी मुतहम्मल मिजाज और बज़ाहिर गुस्सा और जिद करने वाला ना लगता हो, मगर वो इसे कभी भी दिल से माफ नहीं कर सकता। आज जनवरी की पहली तारीख है, आज से लेकर 31 मार्च तक तुम्हें वहां इनके साथ रहना होगा। अगर तुम ऐसा करने पर आमादा हो तो 1 अप्रैल को जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी तसल्ली के लिए आज पहली और आखिरी बार तुम्हें यकीन दहानी करवा रहा हूं कि 3 महीने से अगला एक दिन भी तुम्हें ना यहाँ रहना पड़ेगा और ना किसी नापसंदीदा रिश्ते को जोड़े रखना पड़ेगा। और मैं अपने लफ्जों से फिरने वाला इंसान नहीं हूं। और वो जानती थी कि वो अपने लफ्जों से फिरने वाला इंसान नहीं। 3 महीने बाद वो यहाँ रहना चाहेगी या यहाँ से जाना चाहेगी, ये इसकी जाती मर्जी है। इसमें वो मुदाखलत नहीं करेगा कि इस बात से आगा जान भी वाबस्ता है, मगर 3 महीने बाद वो इसे छोड़ देगा, ये एक तयशुदा बात थी। आगा जान, इनका बेटा बहरोज खान, पोतियां फारा और जरमीना सब गुस्से के तेज, जिद्दी, जज्बाती और अनाप्रस्त लोग थे, जबकि इनका दूसरा बेटा सहीब खान और इसका बेटा वली ठंडे मिजाज के, सब्रो बर्दाश्त वाले, मुतहम्मल, नर्म तबीयत लोग थे। मगर इस नरमी, बर्दाश्त और तहम्मल के बावजूद वो थे तो इसी खानदान से, जो जिद और अना इन सब में थी वो इनमें क्यों ना होती। वो वली से जिस रात बात करके आई थी, इसे गुजरे 14 दिन हो चुके थे। ये मार्च की 12 तारीख थी। वो जानती थी काउंट डाउन शुरू हो चुका है, आज सिर्फ 19 दिन बाकी बचे हैं, कल 18, फिर 17, फिर 16। इसकी निगाह कैलेंडर पर जाती तो इसे देख कर मुस्कुराता, फारा बहरोज खान, वक्त को रोक सकती हो तो रोक लो। वली से इस रात बात करके आने के बाद, इस रात की सुबह, इसे इस मोहब्बत का अदराक पाने के बाद से वो हर पल वक्त के रुक जाने की दुआ मांग रही थी। इस रात से आज तक तमाम दिनों में वो सारा दिन आगा जान के साथ मुस्नुई कहके लगाती और रात में बिस्तर में मुंह छुपाकर बे आवाज रोया करती, जिससे इसे मोहब्बत है वो इसे माफ क्यों नहीं कर देता। इनकी बहू ने एक उम्र गुजारने के बाद आखिरकार इनकी मोहब्बत को तस्लीम कर लिया। मोहब्बत की जीत की ये सरशारी ऐसी थी कि वो पहले से भी ज्यादा खुश और मुतमईन नजर आने लगे। अब इन्हें उठाने बिठाने के लिए सहारा देने की जरूरत ना थी, वो बाथरूम खुद चले जाते थे। किसी किसी वक्त हिम्मत होती तो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके पास किचन में आ जाया करते, वो काम करती रहती। वो कुछ देर किचन टेबल पर बैठ कर इसे बातें करते रहते, फिर थकने लगते तो वापस अपने कमरे में चले जाते। वली सुबह या कभी कभी शाम के वक्त इन्हें थोड़ी बहुत चहलकदमी भी करवाने लगा था। कभी इनकी तबीयत में कोई थोड़ी बहुत खराबी होती, कोई दवा सूट ना कर रही होती, किसी का कोई साइड इफेक्ट होने लगता तो फारा इनकी दवाओं में मामूली सी रद्दोबदल, मकदार में कमी या तब्दीली कर दिया करती। हाँ, ऐसा वो हमेशा डॉक्टर निसार से फोन पर गुफ्तगू करने के बाद किया करती। आगा जान इसे छेड़ने को मजाकन कहते कि इनकी तीमारदारी के बहाने वो एक सीनियर डॉक्टर की जेर निगरानी अपने तजर्बात और काबिलियत को बढ़ाने में मगन है। इन दिनों इनके साथ हंसना भी कितना दुश्वार अमल लगा करता था, मगर वो अपने किसी भी अंदाज से अपनी कोई टेंशन और उलझन उन पर जाहिर ना किया करती थी। जरमीना के साथ भी इसका मोहब्बत भरा ताल्लुक मजीद मजबूत हो गया था। इस हद तक इन दिनों जब वो अपनी पढ़ाई की शदीद नोयत की मसरूफियात परेशानियों में घिरी थी, तब इसकी टेंशन को कुछ कम करने और पढ़ने का भरपूर मौका फराहम करने को उशना और हुज़ैफ़ा दोनों को ड्राइवर के साथ जाकर यहाँ ले आई थी। इसने तो यूं ही फोन पर फारा से आयशा आंटी के ना होने की वजह से बच्चों की मसरूफियात और पढ़ाई के लिए मुनासिब वक्त ना मिलने और असाइनमेंट्स वगैरह की तारीखों का जिक्र कर डाला था, मगर फारा आगा जान को सब बताकर इसी रोज इसके घर जा पहुंची थी। इबाद घर पर ना तो जरमीना इसकी इजाजत के बगैर इस तरह बच्चों के इसके साथ भेजते हिचकिचा रही थी। अबाद नाराज होंगे फारा, इन्हें बात अच्छी नहीं लगती कि मैं अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी मुश्किलात के हल के लिए अपने मेके की तरफ दौड़ूं। मैं उशना हुज़ैफ़ा को साथ ले जा रही हूँ, आयशा आंटी आएंगी तो ये वापस आ जाएंगे। तुम इनके यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स वगैरह सब चीजें जल्दी से मेरे सपुर्द कर दो और 5-6 दिनों के लिए इनके कपड़े भी। तब तक मैं अबाद भाई से फोन पर बात कर रही हूँ। ये कभी बहुत पहले का किस्सा था जब इसे अबाद को अबाद भाई कहना जबरदस्ती का रिश्ता जोड़ना लगा था। इबाद भाई, क्या उशना हुज़ैफ़ा मेरे कुछ नहीं लगते? इसने जरमीना ही के घर से अबाद का मोबाइल नंबर मिलाया और सलाम दुआ के बाद छूटते ही बोली, हाय, तुमने ये पूछने के लिए मुझे जिंदगी में पहली बार फोन कॉल की है। वो इसके अंदाज पर हैरान भी हुआ और महफूज भी। अगर आप समझते हैं कि मेरा इन दोनों के साथ कोई मामूली सा भी रिश्ता है तो मुझे ये इजाजत दीजिए कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं जब तक आयशा आंटी कराची से वापस नहीं आ जाती, इस वक्त तक के लिए। इस पूरे जुमले में इजाजत का लफ्ज जबरदस्ती घुसाया हुआ लग रहा है, इसलिए कि आपका अंदाज मुकम्मल तौर पर धौंस धमकी देने वाला है। चले मैं इस लफ्ज को क्या अपने जुमले ही को बदल देती हूँ, मैं उशना और जैफा को अपने साथ ले जा रही हूँ। हाँ, ये अंदाज फारा बहरोज खान को ज्यादा सूट करता है, वो कहका लगा कर बोला भी था। जवाबन वो भी बेसाख्ता मुस्कुराई थी और इनकी बातें खामोशी से सुनती जरमीना भी। यूं वो बच्चे आजकल अपनी ननिहाल में रह रहे थे, सुबह वो दोनों यहीं से स्कूल जाते, वो इन्हें तैयार करवा कर ड्राइवर के साथ रवाना करती कि वली ऑफिस आगा जान के साथ नाश्ता कर लेने और इनके साथ कुछ देर बातें कर लेने के बाद जरा ताखीर से जाता था। इसके बाद बाकी का सारा दिन फिर वो दोनों आगा जान और फारा के साथ भरपूर शरारते करते और खेलते कूदते गुजारते। शाम में मामू के घर वापसी पर बाहर घुमा कर लाने और आइसक्रीम खिलाने की फरमाइश होती, जो हर बार ही पूरी की जाती। आगा जान के साथ बातें करते वक्त के सिवा अगर किसी वक्त वली के चेहरे की दबे संजीदगी बेतहाशा मुस्कुराहट और वालहना हंसी में बदलती तो सिर्फ अपने भांजी भांजा के लिए। रात इसने देखा था कि हुजैफा इसके साथ रेसलिंग कर रहा था, इसके ऊपर चढ़कर बैठा, वो इसके कंधे 1 2 3 की गिनती करते कारपेट से लगाने की भरपूर कोशिश कर रहा था और रेफरी के फराइज अंजाम देती। उशना भी कुछ देर बाद इसके कंधे पर झूलती न जाने कौन कौन सी दास्तानें फराटे से इसे सुनाने में मगन थी। इसके साथ आइसक्रीम खाने के लिए जाने वाली उशना वापसी में अपनी बारबी के लिए साइकिल, ड्रेसिंग टेबल, कुछ नए कपड़े, ज्वेलरी और सैंडल्स खरीद कर लाई थी और हजैफा दर्जन भर छोटे साइज की स्पोर्ट्स कार, जिनका मकसद सिर्फ महज इतना होता था कि फिर फरागत के औकात में मकैनिक इंजीनियर साहब इनके टायर और दीगर सारे पुर्जाजात अलग अलग करके किसी नई इजाद दरियाफ्त में कोशां हो जाते थे। बहन को बारबी का घर सजाने से फुर्सत ना थी और भाई को गाड़ियां तोड़ने से। इन बच्चों के होने से घर में बेहद रौनक और हंगामा था। अब वो तीनों खाना खाते तो वहां आगा जान की बातें और इन दोनों की संजीदगी जैसा कोई माहौल ना होता था। आज शायद इन दोनों के यहाँ क्याम का आखिरी दिन था कि आयशा आंटी की आमद आज मतवक्का थी। आज जुमा का दिन भी था, कई माह की बीमारी के बाद आज आगा जान का जुमा की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करने का इरादा था। वो घर पर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते थे और जुमा के दिन जब वो मस्जिद ना जा पाते थे और मस्जिद से जुमा के खुतबा और अजानों की आवाजें आया करती तो वो बेकरार से हो उठते थे। आज मस्जिद जाने का प्रोग्राम उन्होंने रात वली के साथ तय कर लिया था और वह इन्हें मस्जिद ले जाने हस्बे वादा नमाज के वक्त से काफी पहले घर पर मौजूद था। वो इस वक्त नहाने और जुमा का भरपूर एहतमाम करने में मसरूफ थे, साथ साथ फारिया को भी ये बताते जा रहे थे कि उन्होंने हमेशा जुमा की नमाज का एहतमाम भी बिल्कुल ईद की नमाज की तरह किया है और जब इसकी दादी जिंदा थी तो वो इन्हें अपने दोनों बेटों को जुमा की तैयारी में खूब खूब मदद करवाती थी। वो इतने महीनों बाद मस्जिद जाने की एक्साइटमेंट में बेहद खुश थे। वो आगा जान की पुरजोश तैयारियों को देख रही थी और खुश हो रही थी। हुजैफा इससे जिद करके अपना भी लिबास तब्दील करवा चुका था, कलफ लगे कढ़ाई हुए शलवार कमीज और स्वाती टोपी के साथ गालबन इसका भी नमाज के लिए जाने का इरादा था। उशना ने भी जुमा के एहतराम में स्लीवलेस ही सही कमीज शलवार और दुपट्टा मुंतखिब करके पहन लिया था, मगर इस भरपूर तैयारी और एहतमाम के बाद जब वो दोनों बहन भाई से कंप्यूटर पर साथ बैठकर लॉयन किंग खेलते नजर आए तो पता चला एहतराम सारा हो चुका, अब अपना काम हो रहा है। वली आगा जान को गाड़ी में बिठाकर मस्जिद ले गया था, वहां से वापस आकर वो थके हुए नहीं बल्कि बेहद खुश और एक्टिव से थे। इन्हीं की फरमाइश पर फारा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाया। एक तवील अरसा बाद वो अपने घर के इस कमरे में अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल पर घर के सरबराह की वो खसूसी कुर्सी आज एक बार फिर इनके वजूद से सज जाने वाली थी। फारा ने आज ही इनके लिए लंच भी थोड़ा एहतमाम वाला बनाया था और बाकी सबका खाना बनाया तो सिद्धू ने था, मगर मीठे में गाजर का हलवा फारा ही ने बनाया था। खूब मेहनत से और तमाम तर लवाजमात इसमें शामिल करके खोया, मेवे, उबले अंडे, चांदी के वर्क इसने कोई कमी ना छोड़ी थी। आगा जान इतने दिनों बाद मस्जिद गए थे तो इनके पास सुनाने के लिए कई किस्से थे। वो वहां 5 वक्त के जितने पक्के और बाकायदा नमाजी थे तो सबसे दोस्तियां भी खूब थी। अब वो खुशी खुशी यही बता रहे थे कि मस्जिद में इनके दरीना दोस्तों और साथियों ने आज इनका इस्तकबाल किस वालहाना गर्मजोशी से किया है। वो जरमीना के बेटे को इंसान बनाने की कोशिशों के साथ इनकी बातें भी पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। इसकी प्लेट में चावल डालने के बाद इसने इसे धमकी दे दी थी कि अगर लंच के बाद वो कंप्यूटर पर गेम खेलना चाहता है और शाम में इसके साथ पार्क भी जाना चाहता है तो बगैर कोई सड़ा हुआ मुंह बनाए ये प्लेट खाली कर दे। वली आगा जान के बराबर दाईं तरफ कुर्सी पर बैठा था जबकि वो इश्ना और हुज़ैफा के साथ। इसके सामने वाली कुर्सी पर अपनी प्लेट में मौजूद खाना खत्म करके वली मेज पर रखे फल उठाकर आगा जान के लिए काटने लगा। वो बेचारे हसरत भरी निगाहों से गाजर के हलवे को देखते सब्र शुक्र करके फल खा रहे थे। कभी कभार की बद एहतियाती में फारा कोई हर्ज ना समझती थी। एक शख्स पूरा और मुकम्मल परहेज करता है, अगर कभी कभी कुछ बद एहतियाती कर जाए तो कोई मजायका नहीं। बहरहाल वो एक जिंदा जीता जागता इंसान है। आप इस पर अल्लाह की हर नेमत बंद नहीं कर सकते, मगर वली इनके सख्त परहेज का कायल था। फारा इससे मैं डॉक्टर हूं या तुम कहकर कोई बहस नहीं कर सकती थी, सो खामोश रही। वली ने खुद भी आगा जान के साथ फाली खाए थे, गाजर के हलवे का एक चम्मच भी ना खाया था। खाने के अहतमाम पर शादी के किसी बुलावे का जिक्र होने लगा। वो कुछ कुछ रिश्तेदारों को जानने तो लगी थी मगर बहुत अच्छी तरह सबसे अभी भी वाकिफ ना हो सकी थी। हफ्ता भर पहले वहां से शादी का कार्ड आया था और अब आगा जान इसे याद दिला रहे थे कि ये शादी इनके किसी रिश्ते से लगते नवासे की है और वली जरमीना और फारा न जाने इस बंदे के किस रिश्ते के कजन्स हैं। आगा जान तो शादी की तकरीब में जाहिर है शिरकत ना कर सकते थे कि इतनी देर बैठना इनके लिए नामुमकिन था, मगर उन्होंने फारा से कहा था कि वली के साथ वो इस शादी में शिरकत करे। वो इस फैमिली की फर्द है तो इसे सबकी खुशी और गम में भी फैमिली के अफराद ही की तरह शरीक होना चाहिए। वो वली के साथ शादी की तकरीब में जा रही थी। वो बिल्कुल खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो बराबर वाली सीट पर बैठी बिल्कुल खामोश और संजीदा थी। वो हैरान होती थी इस शख्स के सेल्फ कंट्रोल पर, इसे खुद पर अपने जज्बात पर कितना काबू था। अब तो खैर इसे इस बात से किए बहुत दिन हो चुके थे, मगर जिस रात वो इसे बात करके गई इसके अगली सुबह इसने वली को इतना ही नॉर्मल और पुरसकून देखा था जैसे रोज देखती थी। यहां तक इसने फारा से भी बिल्कुल रोजाना वाले अंदाज में आवाज जान का बीपी चेक कर लो, मैं इनकी दवाएं ले आया था, देख लो सही है वगैरह जैसी रूटीन की बातें तक की थी। कोई और तो क्या, इन दोनों के साथ सुबह शाम रहते आगा जान तक इन दोनों के मबैन कोई गैर मामूली अंदाज या माहौल भांप ना पाए थे। वली का यह लाताल्लुक बेन्यास अंदाज इसे नफरत और गुस्से से कहीं बढ़कर इंसल्टिंग लगता। वो तो इसे इस लायक भी नहीं समझता कि इस पर कोई तंज ही कर दे, मोइस के हवाले से कुछ चुभती बात की तंजिया फिकरा ही कह दे। इसका दिल चाहता कि वली से कहे तुम मुझ पर चीख चला लो, हर बुरा लफ्ज बोल दो, अपना सारा गुस्सा निकालो, मगर प्लीज ये लातल्की और बेगानगी की मार मुझे मत मारो। ये तंज मसखर गुस्सा नफरत से कहीं ज्यादा कड़ी है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, कोई म्यूजिक तक न बज रहा था। वो शायद म्यूजिक अजनबियों के साथ एंजॉय करना पसंद नहीं किया करता था। इसने स्टेयरिंग पर जमे इसके मजबूत मर्दाना हाथों को देखा, बेख्तियार इसका दिल चाहा वो इसके हाथ के ऊपर अपने हाथ रखे और कहे वली मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, प्लीज पिछली हर बात भुलाकर मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। वो ये सब कुछ कह सकती थी, मोहब्बत के इजहार में पहल करते इसे कोई आर ना थी, मगर अपनी जुरत और सवाफ गोई का वो आज से पहले बेशुमार बार इतने मनफी अंदाज में नफरत के इजहार में इस्तेमाल कर चुकी थी कि आज इसकी मोहब्बत का यकीन करता कौन। काश जितनी इसमें जुरत है इतनी ही अकल भी होती तो आज वो ये दिन ना देख रही होती। वो दोनों शादी की तकरीब में पहुंचे तो इनके साथ साथ ही जरमीना और इबाद की गाड़ी भी आकर रुकी। इन लोगों को देखकर फारा और वली इधर ही आ गए। तुम वो लाला गाड़ी से उतरते शानदार लग रहे थे, आयशा आंटी और इबाद को सलाम करने के बाद वो जमीना की तरफ बढ़ी तो वो इसके हाथ थाम कर आस्तगी और मोहब्बत से बोली। इसकी आवाज आहिस्ता आवाज में कही बात आयशा आंटी के बुलंद और मखसूस नोयत के कहकों में मजीद दब गई थी। शुक्र था कि इसकी आवाज दब गई, वरना इसके इस जुमले पर सब इसका रद्देमल इसके चेहरे पर पड़ना चाहते। इसने फिर जरमीना की तरफ देखा, इसने कोई जवाब तलब बात ना कही थी, सिर्फ अपनी एक राय एक फीलिंग इससे शेयर की थी। वो अभी भी मुस्कुराती निगाहों से फारा को देख रही थी। पता नहीं जरमीना ने किस चीज और किस बात से राय कायम की थी कि इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। अगर वो इन दोनों की शादी में साथ आने की वजह से ऐसा समझ रही थी तो ये सिर्फ इसकी खुशफहमी ही हो सकती थी। वो जरमीना को कैसे बताती कि अपनी तरफ खुलते खुशियों और मोहब्बतों के दर उसने खुद अपने हाथों से बंद किए हैं। वो यहाँ पेशावर वली सहेब खान के साथ जिंदगी गुजारने नहीं बल्कि जिंदगी के फकत 3 महीने गुजारने आई थी और इन 3 महीनों के अहतमाम पर वो इसे इसकी हस्ब ख्वाहिश फरमाइश अपने नाम से आजादी का परवाना दे देगा। वो यहाँ एक मुआहिदा करके आई थी और अब अपनी कही किसी भी बात से वो मुकर नहीं सकती, इसे भुला नहीं सकती, अगर चाहे तो भी नहीं। एक दम ही इसे इतनी वहशत ने घेरा कि वो अपने पोर्शन से निकलकर सीधी आगा जान के कमरे में आ गई। वो पिछले दोपहर के खाने के वो लेटे थे, मगर अब असर का वक्त होने वाला था और जानती थी कि वो नमाज की तैयारी के लिए जाग चुके होंगे। वो पिछले दिनों में बेशुमार बार आगा जान के पास ये मसला लाने का सोच चुकी थी, मगर हर बार जब अपनी 1 जनवरी की वो हरकत याद आती तो इसके उठते कदम बेख्तियार रुक जाते। ये बात इन्हें बताने के लिए हौसला कितना चाहिए था। अब तक तो वो यही समझते हैं कि इनके शदीद बीमारी का सुनकर सब कुछ बुलाकर यहाँ आ गई थी। अगर इन्हें हकीकत पता चल गई तो इन्हें किस कदर दुख होगा। इनका मान तोड़ने का खुद में हौसला कहाँ से लाती, मगर इस वक्त वो इनके पास आने से खुद को रोक ना पाई। दिन पर दिन गुजर रहे हैं, क्या वो खामोशी से इस रिश्ते को खत्म हो जाने देगी। वली के पास फिर जाने का कोई फायदा ना था। आगा जान, आओ मेरी जान, वो बिस्तर से उठने की तैयारी कर रहे थे। आगा जान, मैं आपसे अपने और वली के रिश्ते के बारे में, उन्होंने इसके लबों पर हाथ रखकर इसे आगे बोलने ना दिया। तुम्हें इस रिश्ते के मुतल्लिक कोई टेंशन की जरूरत नहीं है जाने अजीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जो तुम्हारी खुशी है वही मेरी भी खुशी है। वो इस मौजू पर बात करने ही को आमादा ना थे, यूं जैसे वो जानते थे कि वो सिर्फ इनकी सेहत की तरफ से मुतफक्कर होती इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाए जाने से डर रही है। आखिर वो आगा जान से कहेगी क्या और कैसे, और वली क्या फायदा आगा जान को इस रिश्ते के कायम रखने के हवाले से अपना हम नवा बना ले तो वो हुक्म के गुलामों की तरह आजी से इसकी पसंद और ख्वाहिश पर सर झुका देगा। यूं आगा जान का सहारा लेकर इनके जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करके तो वो खुद उसकी नजरों में मजीद अपनी चलाने और मनमानी करने वाली जिद्दी खुद सर लड़की साबित कर देगी। इसे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि वो आगा जान से इस मामले में किसी भी तरह की मदद नहीं ले सकती। इनसे मदद मांगने का सिर्फ एक माकूल तरीका है कि आप इन्हें अलिफ से बे तक सब कुछ बता दें, और इतनी हिम्मत वो खुद में हरगिज नहीं पाती थी। ये उस रोज से 2 दिन बाद की बात है जब वली ऑफिस से वापसी में कुछ देर से भी आया और साथ कुछ शॉपिंग भी करके लाया। चंद एक चीजें तो आगा जान के लिए और घर के लिए थी, बाकी शॉपिंग का बुनियादी मकसद आबाद और जरमीना की शादी की सालगिरह का तोहफा खरीद कर लाना था। इन दोनों के लिए खरीदा गया कीमती तोहफा वो आगा जान को दिखाने लगा। उन्होंने तोहफे को काफी पसंद किया। फारा पहले से जानती थी कि वो जरमीना की वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। आगा जान कई रोज पहले से ये बात बता चुके थे, और ये भी कि बच्चों की सालगिरह तो वहां मनाई ही, बहुत धूम धड़के से जाती है और यहां से इसमें शिरकत भी भरपूर होती है। मगर जरमीना और इबाद की शादी की सालगिरह पर भी हर साल यहां से वली और आगा जान की तरफ से इन दोनों के लिए एक मुश्तरका तोहफा जाया करता है। जब तोहफा सब घर वालों की तरफ से मुश्तरका दिया जा रहा था तो वो भी इसी घर का हिस्सा थी, इसलिए इसके अलग से कुछ तोहफा देने की तुक बनती नहीं थी। हाँ, इसने तभी आगा जान से जरमीना की शादी की सालगिरह का तذکرہ सुनने के बाद ही जरूर तय कर लिया था कि वो तोहफे के साथ वहां ले जाने के लिए एक अच्छा सा केक जरूर बेक कर लेगी। इसका ख्याल था कि वली इसे चलने के लिए नहीं कहेगा, मगर वो वाकई कुछ चीप और थर्ड क्लास जज्बाती हरकतें नहीं किया करता था। अगली शाम जब वो ऑफिस से घर आ गया तो आगा जान से दुआ सलाम और खैर आफियत के बाद इससे बोला, जरमीना के घर चलोगी? इसने इस बात में सर हिलाया तो इसी गैर जज्बाती ला तल्लुकी सी टोन में बोला, 8 बजे तक चलेंगे, तैयार हो जाना। इसने ठीक कहा था, इन दोनों का आपस का ये रिश्ता ना भी रहे तब भी वो इस घर की फर्द और इसकी ताया की बेटी तो रहेगी, और वो साबित करके दिखा रहा था कि वो सब कुछ कितनी खुश असलूबी और हंसी खुशी अंजाम दिलवा देने वाला है। इसके गैर जज्बाती संजीदा और शायस्ता अंदाज के जवाब में खुद भी इसे रवैये का मुजाहरा करती संजीदगी से सर हिला गई। 8 बजने में भी कुछ मिनट थे जब वो तैयार हो चुकी थी। चॉकलेट केक वो दोपहर ही में तैयार करके फ्रिज में रख चुकी थी। इसने जरमीना ही का कुछ रोज पहले तोहफे में दिया ब्लू और ग्रे रंगों के इम्तजाज वाला सूट पहना। लिबास तब्दील करने के बाद लिपस्टिक, आईलाइन और मस्कारे के साथ तैयारी को मुकम्मल करते वो ग्रे और ब्लू शीशों और धागों के काम से आरास्ता दुपट्टे को सर पर लेती ड्रेसिंग टेबल के सामने से हटी तो खुद ही चौंक सी गई। बिल्कुल जरमीना ही के से अंदाज में हर वक्त दुपट्टा सर पे लिए रखना इसकी कब से आदत बन गया था, इसे खुद एहसास नहीं हो सका था। इब्तदा खानदान के अफराद की आगा जान की यादत के लिए आमद के दौरान इनकी मेहमान नवाजी मेजबानी के दौरान इसने कसदन ऐसा करना शुरू किया था, मगर ये आदत इतनी पुख्ता हो गई थी कि इस वक्त वो किसी शौरी कोशिश के बगैर खुद ब खुद ऐसा कर गई थी। इसे खुद पर तअज्जुब भी हुआ और अच्छा भी लगा। इन दोनों की वहां आमद जैसे एक मतवक्का बात थी। जरमीना तो जैसे बेसब्री से मेके से किसी की आमद का इंतजार कर रही थी। इसे और आबाद को तोहफा देने से कबल वली बच्चों के इनके लिए लाई गई चॉकलेट्स देने लगा। ननियाल के इस गैर जरूरी लाड़ प्यार ने मेरे बच्चों का सत्यानाश कर दिया। बाद में एक सर्द आह भरी। मैंने सख्ती से कह दिया था कि अब आइंदा बारबी के कपड़े, जूते, जेवरात, घर का आरायशी सामान, इनका जिम, ब्यूटी सलून वगैरह वगैरह कुछ खरीद कर ना दूंगा, मगर मेरी सख्ती का क्या असर होना था। मामू जान जो बिगाड़ने को मौजूद हैं, वहां से ऐसी भरपूर शय लेकर आई हैं कि अब मुझसे फरमाइश है इन्हें बारबी का दूल्हा माँ इसकी मुकम्मल वार्डरोब के फ्राहम किया जाए। वली इसके शिकवों पर ध्यान दिए बगैर आयशा आंटी की तरफ मुतवज्जा हुआ तो इबाद फारा से कहने लगा, मेरी बहन मुझे कंजूस, मक्खी चूस और कोई जालिम बाप ना समझ लेना, मगर इस छंटाक भर की बारबी के नखरों की तो कोई हद हो। पहली बार बड़ी खुशी खुशी खुद बेटी साहबा के लिए वो आफत की परकाला खरीद कर लाया था। क्या मालूम था घर में बेटी को बारबी लाकर देना घर में हाथी रख लेने के मुतरादफ है। गुड़िया खरीद कर आप आइंदा अखराजात से बच गए, ऐसा सोचे भी मत। खिलौनों की दुकानों पर आंसा के कपड़ों, जूतों से लेकर दीगर तमाम जरूरियात जिंदगी का वो सामान मौजूद है कि बंदा आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह जाए। पिछले महीने इनके कपड़ों की इस्त्री का मसला हल करने के लिए आयरन स्टैंड और एक इस्त्री खरीदी गई थी, साथ टी पार्टी का सब साजो सामान, और अगर आंसा को पिकनिक पर भी जाना हो तो इसके तमाम लवाजमात खरीद कर दिए गए थे। और खैर अब तो दूल्हा मियाँ भी चाहिए, यानी यक ना शुद्ध दो शुद्ध। वो इबाद की बातों को इंजॉय करती हंस रही थी। एक इतना खुश मिजाज, एक इतना ज्यादा संजीदा। पता नहीं मिजाज के इस फर्क के बावजूद इसमें और वली में इतनी ज्यादा दोस्ती कैसे थी। चूंकि खाने का टाइम हो रहा था इसलिए कुछ देर की गुफ्तगू के बाद ही जरमीना खाना लगवाने उठ गई। भाई की आज आमद गैर मतवक्का ना थी, इसलिए इसने डिनर पर खासा अहतमाम कर रखा था। वहां केक का कोई अहतमाम ना था, बकौल इबाद के बुढ़ापे में ये चौंचले कौन करे। फारा जो केक लेकर गई थी इस पर छुरी चलाने के लिए भी अम्मा अब्बा से पहले दोनों बच्चे बेचैन बेकरार थे। इनका आपस में केक काटने पर झगड़ा इनके चचा ने दोनों के हाथ में बैक वक्त छुरी थमाकर निमटवाया। हाँ भाई, ये देसी टेस्ट रखने वाले कहाँ केक खाएंगे। खाने के अहतमाम पर मीठे की बारी आई तो वली को अखरोट का हलवा प्लेट में डालता देकर इबाद बोला, तलीम अमरीकी हासिल की है मगर खाने इन्हें सारे के सारे देसी पसंद हैं। वली के अलावा बाकी सब ने मीठे में केक ही लिया था। हाय फारा, तुमने इतना जबरदस्त केक कैसे बना लिया, ये तो घर का बना हुआ मालूम ही नहीं हो रहा। प्लीज मुझे इसकी रेसिपी दे दो, मेरा सादा केक सही बन जाता है मगर करीम वाले सारे के सारे इंतहाई फजूल। जरमीना केक का पहला टुकड़ा ही मुंह में रखकर बा आवाज बुलंद बोली, लीजिए, यहाँ खालिस किस्म की ख्वातीनी गुफ्तगु अन करीब शुरू होने वाली है। चलो वली, हम लोग लाउंज में चलते हैं। बाद गालबन रेसिपीज के ये तबादले देख देकर खासा उकताया हुआ था, तभी अपनी प्लेट हाथ में लेकर वली को भी उठने का इशारा करता फौरन खड़ा हो गया। वो केक की रेसिपी बता चुकी तो आयशा आंटी अपनी कुछ मशहूर जबाना रेसिपीज इन दोनों से शेयर करने लगी। वो इन लोगों के साथ गुफ्तगू को इतना इंजॉय कर रही थी कि 11 बजे घर चलने के लिए इसे वली ही ने कहा था। अगली सुबह नाश्ते के बाद किचन में चंद एक काम निमटा कर वो आगा जान को दुआ देने के लिए आगा जान के कमरे में आने लगी। तब इनके बराबर वाले कमरे से आती आवाज ने इसके कदम रोक लिए। वली किसी से फोन पर बात कर रहा था, वो समझ रही थी कि शायद वो ऑफिस जा चुका था मगर वो अभी गया नहीं। जी वही साहब, आप पेपर्स तैयार करवा लीजिए। हाँ, वो पहले मैंने आपको इसलिए रोक दिया था क्योंकि उस वक्त मैंने आगा जान से बात नहीं की थी। एक लम्हे के लिए इसने दूसरी तरफ कोई बात सुनी, फिर दोबारा बोला, मैं 5-6 दिनों के लिए कराची जा रहा हूँ। आज 22 है ना, ज्यादा से ज्यादा 30 या 31 तक आ जाऊंगा। आप पेपर्स मुझे तब तक भिजवा दीजिएगा। जी हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। इसे रिसीवर रखे जाने की आवाज आई और कदमों की चाबी सुनाई दी। फौरन वहां से हटने का जो सबसे पहला तरीका इसकी समझ में आया वो बराबर वाले कमरे में दाखिल हो जाना था और वो फौरन ही ऐसा कर भी गई थी। इधर वो कमरे में आई, इधर अपने कमरे से निकल कर वली भी आगा जान के दरवाजे पर आया। आगा जान मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। वो शायद लेट हो गया था, इसलिए दरवाजे पास ही ने खुदा हाफिज कहता फौरन वापस मुड़ गया। आवा जाने वली को कुछ खास तवज्जा से ना देखा ना खुदा हाफिज का, इनकी तवज्जा फारा की तरफ थी। क्या हुआ बेटा? इसकी परेशानी, इसका खौफ, इसका इस्तराब इसके चेहरे से हविदा था। वो आवाजान से अपना तासरात छुपाना चाहती थी मगर नाकाम हो रही थी। क्या हुआ फारा? रूही तो ठीक है ना? कल तो तुम्हारी इससे फोन पर बात हुई है, वो अगले महीने आने का वादा कर रही थी, फिर अचानक इसे पता नहीं एकदम ही क्या हुआ, वो दौड़ती हुई आई और आगा जान की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। आगा जान, वली मुझसे नफरत करता है, मैं इससे माफी मांग चुकी हूँ, फिर भी ना इसने मुझे माफ किया और ना मुझसे नफरत खत्म की। आप कहते हैं वो बहुत मेच्योर, बहुत मामला फहम, बहुत सब्र और बर्दाश्त वाला है, वो मेरी और जरमीना की तरह जिद्दी और जज्बाती और गुस्से वाला नहीं, मगर मैं आपको बताऊं वो मुझसे और जरमीना से भी ज्यादा जिद्दी और गुस्से वाला है। इसमें अना भी हम दोनों से कहीं ज्यादा है, हम दोनों तो मुंह पर बोलकर दिल साफ कर लेते हैं, वो दिल में कीना बुगज रखने वाले लोगों में से है, वो मुंह से कहता जरूर है मगर दिल से इसने मुझे माफ नहीं किया। वो रोते हुए बोली, नहीं बेटा वो तुमसे नफरत नहीं करता। आवा जाने इसके बालों में प्यार से हाथ फेरा, नहीं वो मुझसे नफरत करता है, इसने अपना दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ नहीं किया। मैं आपको इसकी नफरत की इंतहा बताऊं, वो मेरे हाथ की बनी हुई कोई चीज तक खाना पसंद नहीं करता। उस दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपको याद है? आप एक बार जरमीना और वली की बचपन की बातें बताते हुए बता रहे थे कि वली को बचपन में आमना चिची के हाथों के बने हलवे बहुत पसंद थे, वह इनसे गाजर का हलवा फरमाइश करके बनवाता था, और उस दिन जब मैंने हलवा बनाया तो इसने इसे इग्नोर करके फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए। कल जमीना के घर इसने मेरे बनाए केक के बजाय अखरोट का हलवा खाया, मेरे बनाए खानों में जैसे जहर मिला होता है, ये है इसकी मुझसे नफरत। फिर आप कहते हैं वो मेच्योर है, अगर वो मेच्योर होता तो क्या इसे ये नजर ना आता कि मैं अब बदल गई हूँ, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। वो रोते हुए बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी, मगर यकदम ही इसे खुद ही एहसास हुआ अब इन सब बातों का फायदा क्या है। वो आगा जान से सारी बात कर चुका है, इनकी ताइद और हमायत हासिल करने के बाद इसने वकील को तलाक के कागज अब तैयार करवाने को कह दिया है। अब गिले शिकवे शिकायतें और ये आंसू किस काम के हैं, इनसे फायदा क्या हासिल हो सकता है। वो अब आगा जान के रूबरू सवाल जवाब से खायफ थी, वो पता नहीं इससे क्या पूछेंगे और वो इनसे क्या कहेगी। इसके पास कहने के लिए कुछ भी तो नहीं, मगर शुक्र हुआ अभी इसने इनकी गोद से सर उठाकर शर्मिंदगी में बुरी तरह गिरते आंसू साफ करने शुरू किए ही थे कि इनके एक बहुत पुराने वाकिफ इनकी इयादत के लिए आ गए। वो लंदन से आए हुए थे, आगा जान की कई बरसों बाद इनसे मुलाकात हो रही थी, सो इनके साथ इनका गुफ्तगू का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया जो लंच के बाद भी काफी देर जारी रहा था। बुढ़ापे में इंसान का हाफिजा कमजोर हो जाता है, इसने आगा जान के सुबह की बाबत कुछ ना पूछने पर सुकून का सांस लेते सोचा। वली इसी शाम कराची चला गया था, आगा जान कह रहे थे वहां इसे ऑफिस का कोई काम है। रात के खाने पर सिर्फ वो और आगा जान थे। खाने के बाद वो कुछ देर इनसे इधर उधर की बातें करती रही जो अगले महीने यहाँ आ जाने वाली हैं। वो मौजू कुछ देर आगा जान ने बड़े खुशी के साथ से डिस्कस किया, फिर इन्हें दाद देने के बाद कमरे की लाइट्स बंद करके वो इनके कमरे से निकल आई। घर में मुलाजमीन के अलावा सिर्फ वो और आगा जान थे। रात में खुदा ना हास्ता किसी वक्त इनकी तबीयत खराब होती है, किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में बेखबर पड़ी सोती रह जाती। कुछ सोचकर इसने बराबर वाले कमरे का दरवाजा खोल लिया, वो यहाँ नहीं, इससे क्या पता चलेगा कि फारा यहाँ सोई थी। यूं भी वो इसके कमरे की किसी चीज को इस्तेमाल करने या खराब करने नहीं, सिर्फ आगा जान की वजह से यहाँ लेट रही है। बेड पर आकर लेटते वो जानती थी कि एक झूठी तावील है जो खुद को पेश कर रही है, वहां इन दो बेडरूम्स के सिवा और कोई बेडरूम नहीं, बाकी सब बेडरूम्स हटकर हैं या फर्स्ट फ्लोर पर हैं, मगर वो लाउंज में सो सकती है, आगा जान के कमरे ही में सो सकती है। फिर यहीं क्यों? इसलिए कि इसकी जिंदगी में उल्टी गिनती चल रही है, ये कमरा इसका हो सकता था, वो इस जगह आ सकती थी, मगर चंद रोज बाद जब हर रिश्ता खत्म हो जाएगा तब वो इस कमरे पर अपना कोई हक बाकी ना रख पाएगी। अभी वो हक इससे छीना नहीं, उल्टी गिनती अभी खत्म नहीं हुई थी। वो 23 तारीख है, वो जब तक कराची गया हुआ है, और इन 5-6 दिनों तक ये एक मामूली सी चोरी तो कर सकती है। बेड की जिस साइड पर इसने इस रात इसे बैठे देखा था वो इसी साइड पर आकर लेटी, इसी तकिए पर सर रखकर, इस तकिए पर सर रखकर बे आवाज रोना अपने कमरे में रोने से बहुत बेहतर लग रहा था। यहाँ एक मानूस खुशबू इसके चारों तरफ फैली हुई थी। इसके बेड पर, इसके तकिए पर सर रखकर लेटना, इसका ब्लैंकेट ओढ़ना, वो एक एक खुशी, एक एक एहसास को अपने अंदर उतार रही थी, अपने अंदर बसा रही थी। ये सब इसका हो सकता था, ये सब इसे चोरी से, चुपके से और डर कर नहीं, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ मिल सकता था, अगर वो जिंदगी में अपने ही हाथों सब कुछ बर्बाद ना कर चुकी होती। वो बेबसी से रोते हुए सोच रही थी कि 8 दिन बाद जब सब कुछ आगा जान की रजामंदी खुशी के साथ खत्म हो जाएगा, और फिर वो इसकी कहीं और शादी करवाना चाहेंगे, फिर वो इन्हें क्या कहेगी। वो अब कभी भी आगाजान को किसी बात के लिए नहीं कह सकती, लेकिन वली के अलावा वो कैसे किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर पाएगी, वो कैसे किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत कर पाएगी। इसके पास आंसू बहाने और पछताने के सिवा जिंदगी में कुछ भी ना बचा था, और वो अब यही कर रही थी। आपने कहा था फारा को अपनी बहू बनाएंगे, आपने ये भी मुझसे कहा था कि मुझे उठाकर अपने साथ ले जाएंगे और मेरे अकड़ू डैडी देखते रह जाएंगे, फिर आज जब आपका बेटा आपकी बहू को छोड़ देने वाला है तो आप इसे रोक क्यों नहीं रहे साहेब चाचा। रात का वक्त था, वो अपने पोर्शन और आगाजान के कमरे के बीच बनी इस झील के पास बैठी थी। चांद कहीं बादलों में छुपा था और इर्द गिर्द इसका उजाला नहीं बल्कि बहुत दूर जलता एक बल्ब ही यहाँ पे मध्यम सी रोशनी फैला रहा था। ये 31 मार्च की रात थी। वली आज शाम वापस आ गया था। रात का खाना इन तीनों ने डाइनिंग रूम में खाया था, और खाने के बाद आगाजान और वली कावे और काफी से भी तरतीब लुत्फ अंदोज होते लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, जबकि वो खाना तक भी बमुश्किल इन दोनों का साथ निभाती फौरन वही वहां से उठ गई। आगाजान के कमरे में कोने में रखी यह एल्बम वो अपने साथ उठाकर बाहर झील के पास आकर बैठ गई थी। वो सहेब चाचा और अपने डैडी के कॉलेज की एक तस्वीर देखती अपने चाचा से मुखातिब थी। कितनी खुशियां, कितनी आरजुएं जुड़ी थी इन दोनों भाइयों की इस रिश्ते के साथ, अपने शहरे दिल के उजड़ने के साथ इसे इन दोनों अजीज तरीन हस्तियों के ख्वाबों की पामाली का भी दुख सता रहा था, और इस दुख में यह एहसास शिद्दत से शामिल था कि ऐसा कुछ होने की वजह भी वही खुद है। वली वापस आकर इतना ही पुरसकून और इतना ही कंपोज्ड था जितना जाते वक्त था, यहां तक इसने इससे भी सलाम दुआ और खैर खैरियत जैसी रसूमात और फॉर्मेलिटीज बाखूबी और बासानी निभाई थी। सहेब चाचा और डैडी की तस्वीरों को देखते हुए वो वली के कमरे के दरवाजे और खिड़की को देखने लगी। आगा जाने की तरह इसके भी कमरे का पिछला दरवाजा यहाँ झील के सामने खुलता था, और इस खिड़की में खड़े होकर शायद वो सुबह के वक्त इस जगह की यह हरियाली, सब्जा और नीलगुं पानी की खूबसूरतियां देखा करता था। वो झील के पास अकेली बैठी रही, रोती रही, घुटने पर सर रखकर बे आवाज, बिल्कुल घुट घुट कर यूं ही रोते रोते इससे वक्त का ख्याल आया। वक्त का एहसास जगा, बेख्तियार चौंकर सर उठाते इसने अपने मोबाइल में टाइम देखा, 11:55। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, और 12 बजे कैलेंडर का नया वर्क उलट दिया जाएगा। अगर वो अपनी बात का, अपनी हट का पक्का है तो सुबह होने का भी इंतजार नहीं करेगा, और ठीक 12 बजे इसे वो ला देगा जिसे लेने 3 महीने पहले वो यहाँ आई थी। वो एक सेकंड भी क्यों अगला होने दे। वो अचानक की बुरी तरह खौफ ज़दा हुई, खौफ में घिरी वो एक सेकंड से भी कम वक्त में वहां से उठी। आगा जान अपने कमरे में जा चुके होंगे, मगर वो लाउंज ही में बैठा इसका इंतजार कर रहा होगा, और इसे अपने कमरे में जाने के लिए लाजमी तौर पर लाउंज से गुजरना पड़ेगा। एक चीज मिलनी तय है, लेकिन अभी क्यों? क्या वो खुद फ्रेबी के ये चंद घंटे और नहीं गुजार सकती? इसने अपने कमरे और लाउंज से गुजरने का इरादा फौरी तौर पर रद्द किया। इसका रुख आगाजान के इस तरफ खुलने वाले दरवाजे की सीमा था। खौफ से इसका दिल इंतहाई तेज रफ्तार से धड़कने लगा। वो अपने दिल की धक धक साफ सुन रही थी।